आर्यांश ने यही सोचा था कि वो दीवा की इच्छा का सम्मान करते हुए वो उससे दूर रहेगा, और सहर ने भी उसे ऐसा ही करने को कहा था। ऐसा नहीं था कि आर्यांश का दिल उसके करीब रहने को नहीं कर रहा था या वो उससे दूर जाना चाहता था, लेकिन दीवा पहले से ही अपने बच्चे को खोने के चलते तकलीफ में थी। सिर्फ दीवा ही नहीं, उस हादसे के बाद आर्यांश को ये लगने लगा था कि अगर वो दीवा के पास गया तो वो उसे हर्ट कर देगा। आर्यांश के इस फैसले से कोई खुश नहीं था। सब यही चाहते थे कि आर्यांश किसी भी मामले में गिलअप न करे, लेकिन फिलहाल उसे टाइम चाहिए था। आर्यांश को अब थोड़ा बेहतर लग रहा था तो वो वर्तिका के घर में और नहीं रुकना चाहता था। वो थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे में जा रहा था कि इस बीच प्रियंक वहां पर पहुंच गया था। वो आर्यांश के किए पर उसे भला बुरा सुना रहा था। प्रियंक वहां उनसे किसी बहस या लड़ने के इरादे से नहीं आया था, वो बस सहर को ले जाने के लिए आया था। जैसे ही सहर का जिक्र हुआ, आर्यांश को ख्याल आया कि आखिरी बार वो सहर को वर्तिका के पास छोड़कर गया था। आर्यांश ने सवालिया नज़रों से वर्तिका की तरफ देखा तो वो हिचकिचाते हुए बोली, मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जो भी हुआ था उसके बाद उसे आपके और दीवा के बारे में पता चल गया। सहर यहाँ नहीं रहना चाहती थी। क्या मतलब यहाँ नहीं रहना चाहती थी? तो तुमने उसे घर से निकाल दिया? प्रियंक ने गुस्से में तेज़ आवाज़ में बोला। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? वर्तिका ने भी चिढ़कर जवाब दिया। सबसे पहले अपना सेंटेंस सही करो। मैंने उसे नहीं निकाला था, वो खुद गई थी और मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की थी। तुम चाहो तो श्रेष्ठ से बात कर सकते हो, वो खुद उसे छोड़ने गया था। यकीन नहीं होता कि मैं तुम दोनों भाई बहन पर भरोसा कर भी कैसे सकता हूँ, प्रियंक सिर पकड़कर बोला। सहर के अचानक वहां से जाने पर प्रियंक बुरी तरह झुंझला गया था। सबसे ज्यादा गुस्सा तो उसे आर्यांश पर आ रहा था, जिसने सहर की जिम्मेदारी लेने के बावजूद उसका ध्यान नहीं रखा। ऊपर से दीवा के साथ भी उसने कुछ कम बुरा नहीं किया था। प्रियंक अपना गुस्सा शांत करने के लिए गहरी सांस ले रहा था। इस बीच आर्यांश ने वर्तिका की तरफ देखकर तुरंत पूछा, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ गई है? वो अपने घर जाना चाहती थी और खुद श्रेष्ठ उसे छोड़कर आया था। आप लोग इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रहे हो? कभी ना कभी तो उसे अपने घर पहुंचना ही था, वर्तिका ने हैरानी भरे लहजे में कहा। आर्यांश ने उसे कुछ नहीं कहा और फिर श्रेष्ठ की तरफ देखा। उसके बिना कुछ पूछे ही श्रेष्ठ ने उसकी नज़रों को समझते हुए कहा, मैं उसे उनके घर के दरवाजे तक छोड़कर आया था। मैंने कहा था कि मैं उसके घर वालों से बात कर सकता हूँ ताकि उसे चीज़ें समझाने में दिक्कत ना हो, लेकिन उसने मना कर दिया। जैसे ही श्रेष्ठ की बात पूरी हुई, प्रियंक बीच में चिल्ला पड़ा। उसने मना कर दिया था क्योंकि उसकी फैमिली अच्छी नहीं है, यू इडियट, ना कि इस वजह से कि वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। उसकी माँ की मौत काफ़ी कम उम्र में हो गई थी और उसकी स्टेप मॉम वो बहुत बुरी है। प्रियंक बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो आर्यांश के पास गया और उसकी कॉलर पकड़कर उसके मुँह पर एक जोरदार पंच मारा। यू नो वॉट आर्यांश कपूर, तुम हमेशा प्रॉब्लमैटिक रहोगे और तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह सकते हैं। तुमने अपने हाथों अपने बच्चे को मार डाला। बेहतर होता कि तुम खुद मर जाते। अगर मुझे शहर को लाने नहीं जाना होता तो आज मुझे तुम्हें मारने से कोई नहीं रोक पाता, प्रियंक ने दांत भींचते हुए कहा और फिर आर्यांश को एक झटके में छोड़ दिया था। आर्यांश कुछ कदम लड़खड़ा गया था, लेकिन ना तो उसने प्रियंक को दोबारा मारने की कोशिश की और ना ही उसे कोई जवाब दिया। बस वो चुपचाप उसके पीछे आने लगा ताकि सहर के मामले में उसकी मदद कर सके। आर्यांश ने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि प्रियंक उसकी तरफ पलटा और उसे चेतावनी देते हुए बोला, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है और बेहतर होगा कि अब तुम उन दोनों ही लड़कियों की जिंदगी से दूर रहो। प्रियंक ने आर्यांश को अपने पीछे आने से साफ मना कर दिया था। आर्यांश ने भी किसी तरह की जिद नहीं की, बस उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था। उसके दिमाग में बस प्रियंक के कुछ शब्द गूंज रहे थे। प्रियंक ने कुछ मिनट पहले यही कहा था कि आर्यांश ने अपने बच्चे को अपने हाथों से मार डाला, उसके बजाय उसे ही मर जाना चाहिए था। उसका एक एक शब्द आर्यांश के सीने को छलनी कर रहा था। वो बिना कुछ बोले कमरे के अंदर चला गया था। मुझे इस शख्स से सख्त नफरत है, वर्तिका पैर पटकते हुए बोली। वर्तिका ने देखा श्रेष्ठ बिल्कुल चुप था, उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। अब तुम्हें क्या हुआ? वर्तिका ने आंखें घुमाकर पूछा। श्रेष्ठ के चेहरे पर मायूसी के भाव थे और वो आर्यांश के कमरे की तरफ देख रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, वो ठीक नहीं है, तुमने नोटिस किया, एक एक चीज उसके पास से दूर होती जा रही है, लेकिन फिर भी वो उन्हें रोकने के लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वो आर्यांश है ही नहीं जिसे हम हमेशा से जानते हैं। आर्यांश एक छोटे से प्रोजेक्ट को भी अपने ईगो पर लेता है और इतने सालों में काम करते हुए उसने किसी भी डील को मिस नहीं किया है। अब उसके हाथ से सीईओ की कुर्सी, उसका सब कुछ चला गया, फिर भी आर्यांश ने एक बार भी पलटकर ये नहीं कहा कि ये उसका हक है। यहाँ तक कि वो दीवा से भी दूर जाने के लिए तैयार है और उसे एक बार भी शहर का ख्याल नहीं आया। प्रियंक ने उसे रुकने को कहा तो वो रुक भी गया। वर्तिका श्रेष्ठ की एक एक बात पर गौर कर रही थी। ऐसा पिछली बार तब हुआ था जब शहर की मौत हुई थी, उसने अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लिया था। हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ये सब दीवा की मिसकैरेज के बाद हो रहा है, वर्तिका ने जल्दी से कहा, उसे सब समझ आ गया था। वो आर्यांश से बात करने के लिए जा ही रही थी कि तभी उसने देखा कि आर्यांश कमरे से बाहर आ रहा था। उसकी आंखें बेहद लाल हो रखी थी और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कहाँ जा रहे हो तुम? चुपचाप बैठकर आराम करो, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है, श्रेष्ठ ने उसे डांटते हुए कहा। मैं ठीक हूँ और डोंट वरी, कहीं नहीं जा रहा। अंदर घुटन महसूस हो रही है तो बस खुली हवा में सांस लेना चाहता हूँ, आर्यांश ने जवाब दिया। वर्तिका उसके पीछे जाने लगी लेकिन आर्यांश ने उससे पहले ही तेज कदमों से चलते हुए उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। वो यही चाहता था कि कोई उसके पीछे ना आए। वहीं दूसरी तरफ जब श्रेष्ठ ने चार दिन पहले सहर को उसके घर के आगे छोड़ा था तब सहर ने उसे यही कहा था कि वो आगे से खुद ही संभाल लेगी। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो घर उनका पुराना पुश्तैनी घर था। 5 सालों में उस घर में कुछ नहीं बदला था। आज भी दीवारों का रंग उड़ा हुआ था और घर से वैसे ही बहस करने की आवाजें आ रही थी। जहां अंदर आते ही सहर के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, वहीं जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए उसकी वो मुस्कुराहट गायब हो गई थी। आपने उस आयांश कपूर से बात की? पिछले 1 महीने से वो हमें 1 रुपया नहीं भेज रहा है। क्या आप उसे सहर से प्यार नहीं रहा? उस लड़की ने जीते जी हमारा कभी कोई फायदा नहीं किया। उसके मरने के बाद थोड़ा बहुत फायदा हो रहा था, फिर न जाने किसकी नजर लग गई। सहर की सौतेली माँ धारा उसके पिता पर चिल्ला रही थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। देखा जाए तो अब मुझे उससे कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि मैंने टीवी में खबर देखी थी। उसके घर वालों ने उसे जायदाद से बेदखल कर दिया है, सहर के पापा ने मायूसी भरे स्वर में कहा।
हाँ तो वो उसकी समस्या है। उसने वादा किया था कि वो हमारी मदद करेगा, फिर चाहे पैसे कहीं से भी ला कर दे, और इन अमीर लोगों के पास खुद का बहुत पैसा होता है। आप बस जाकर उससे बात कीजिए, सहर का कुछ पुराना सामान ले जाना ताकि उसे देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाए, धारा ने उसे समझाते हुए कहा। उनकी बातें सुनकर सहर के चेहरे पर कड़वाहट के भाव उभर आए थे। वो मन ही मन बड़बड़ाकर बोली, क्या सच में मेरे मरने के बाद सबको इतना फायदा हुआ था कि कोई मेरे जीने का सुनकर खुश नहीं हुआ? ना मेरी दोस्त, ना मेरा प्यार, और न ही अब परिवार। इससे अच्छा मैं उस हादसे में मर जाती। सहर की आंखों में आंसू आ गए थे और वो इस दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसके जिंदा रहने पर किसी को खुशी नहीं हुई थी। सहर वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी दरवाजे से उसका भाई निकल कर आया। उसने एक नज़र सहर की तरफ देखा और कहा, ये आप हो ना दीदी? सहर दीदी, आप जिंदा थीं? वो खुशी के मारे काफ़ी एक्साइटेड हो गया था और सहर के गले लग गया था। उसने वहीं से खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा, मम्मी पापा जल्दी बाहर आइए, देखिए कौन आया है, सहर दीदी जिंदा हैं। सहर का नाम सुनते ही उसके पेरेंट्स जल्दी से दौड़कर बाहर आए। उन्होंने अपने सामने सहर को देखा तो उनका मुंह बन गया था। तुम जिंदा थीं? अब तक कहाँ थीं? और तुम आर्यांश के सामने तो नहीं गई हो ना? उसे पता नहीं है ना कि तुम जिंदा हो? धारा के मुंह से सबसे पहले यही निकला, क्योंकि अगर आर्यांश को सहर के जिंदा होने का पता चलता तो वो कभी उन्हें मदद के लिए पैसे नहीं देने वाला था। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मम्मी? दीदी जिंदा हैं, क्या ये काफ़ी नहीं है? उसके भाई ने धारा को आंखें दिखाते हुए कहा, ये जो महंगे कॉलेज में जा रहे हो और अपने शौक पूरे कर रहे हो, इसकी मौत की वजह से ही है। अब ये इमोशनल ड्रामा बंद करो और इसे अंदर लेकर जाओ। गलती से भी कोई इसे देख ना ले, पता नहीं कहाँ से वापस आ गई। सहर की माँ धारा ने उसके भाई को डांटा और सहर को अंदर ले जाने का इशारा किया। उनके अंदर की तरफ जाते ही धारा ने सिर पकड़कर कहा, अब मुझे सब समझ आ रहा है। जरूर उस आर्यांश कपूर को इसके जिंदा होने का पता चल गया होगा। हमें कुछ करना होगा। अगर उसने पैसे भेजने बंद कर दिए तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, और मैं वही गरीबों वाली जिंदगी नहीं बिताना चाहती हूँ। उनका एक एक शब्द सहर के दिमाग में कड़वाहट घोल रहा था, और उस दिन के बाद से उसके पेरेंट्स ने उसे घर के बाहर तक कदम रखने से मना कर दिया था। जहां एक तरफ प्रियांक सहर को लाने गया था तो वहीं इस वक्त आर्यांश अपने पुराने विला के सामने खड़ा हुआ था, जहां वो किसी वक्त में दीवा के साथ रहा करता था। अब तक उस जगह पर पृथ्वी की नज़र नहीं पड़ी थी, इसलिए वहां किसी तरह की सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी, और अभी भी उतनी ही शांति छाई हुई थी। इस घर ने हमेशा मेरे सुख और दुख में साथ दिया है, अब इसे भी छोड़ने का वक्त आ गया है, लेकिन अपने आप को नहीं छोड़ सकता, आर्यांश ने खुद से कहा और फिर अपने कदम अंदर बढ़ाने लगा। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। आर्यांश अपने पुराने घर पर क्यों आया है, कोई आइडिया है? वैसे पता नहीं क्यों, कुछ रीडर को आर्यांश का वही पहले वाला घमंडी अवतार देखना है। उन्हें लगता है कि इसी तरह से आर्यांश दीवा को वापस ला सकता है। मैंने आज कुछ पुराने चैप्टर पढ़े थे और मैंने महसूस किया कि आर्यांश ने कभी दीवा के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, उससे प्यार करता था तब भी नहीं। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले पार्ट पर मिलते हैं।